ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रन्थराज भागवतम् स्कन्नो अध्याय संख्या पहला शुरू करेंगे। बोर्ड पे श्लोक लिखा है 18। ये जो स्कंद है नौवां स्कंद, हमने शुरू किया है नौवां स्कंद, और अभी पिछले दो क्लासेस से हम इसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर इस स्कंद के बारे में इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में बताते हैं कि नवे स्कंद में भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, भगवान के भक्तों से संबंधित कथाएं हैं, इसलिए इसको बोला गया ईशानु कथा इस स्कंद को जो बताया गया। और इस स्कंद का, इस नवे स्कंद का जो उद्देश्य है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि उसका उद्देश्य है कि भक्ति और विज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को उद्धृत करना, इन तीनों को दिखाना। भक्ति इस स्कंद में दिखाया गया है अम्बरीश महाराज के उदाहरण से, वैराग्य इसमें दिखाया जाएगा ययाति महाराज के उदाहरण से। हालांकि ययाति महाराज पहले इंद्रदीप्ति में लिप्त होते हैं, बट कैसे वो बाद में उसको त्याग कर वैराग्य का जीवन लेते हैं, तो वो ययाति महाराज से हम सीखेंगे इस स्कंद में, नवे स्कंद में। उसके अलावा इसमें 24 अध्याय हैं, जिसमें से 13 अध्याय जो सूर्य वंश हैं उनके का विवरण है, और 11 अध्यायों में चंद्र वंश का विवरण है। तो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर नवे स्कंद को शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो हम आज का श्लोक करेंगे, ये हमारा 18वां श्लोक है, इसको उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। यूयं ब्रह्म विदो युक्तास् तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुधेष्वैव। यूयं ब्रह्म विदो युक्तास् तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुधेष्वैव। यूयं ब्रह्म विदो युक्तास् तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्यम् अनृतं विबुधेष्वैव। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्लभे चरणामृत भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यूयम आप सभी ब्रह्म विदः परम सत्य से भली भांति परिचित युक्ता संयमित तपसा तपस्या के द्वारा दग्ध किल्बिषा जिनके सारे भौतिक कल्मश जल चुके हैं, कुतः तब कैसे संकल्प वैषम्य संकल्प में त्रुटि अनृतम झूठा वादा झूठा कथन विभुदेशु देवताओं के समाज में एव अथवा। अनुवाद। आप सभी संयमित मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कलमशों से अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि आप सबका संकल्प विफल हो गया। तात्पर्य, हमें अनेक वैदिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कलमश दूर हो जाता है। तब देवताओं की तरह उसके वचन तथा आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं सभी वैष्णवों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं भागवतम के बारे में कुछ बोल सकूं, इस प्रसंग के बारे में कुछ बोल सकूं जिससे मेरा शुद्धिकरण हो सके और अपने जीवन में कुछ मैं अपना सकूं इसको। हरे कृष्ण। तो यह हम पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, नवा अध्याय अभी हमने शुरू किया है और जैसे हम पिछली दो क्लासों से इसके बारे में सुन रहे हैं, हमने आठवें स्कंद में सत्यव्रत मुनि के बारे राजा के बारे में सुना और कैसे वो मनु बने आगे आके। तो इस स्कंद में, नवे स्कंद में शुरू करते ही हम देखते हैं उन्हीं सत्यव्रत की कथा, जब वो कैसे मनु बनते हैं और क्या फिर कैसे कैसे उनका जीवन में वो आगे क्या करते हैं उसके बारे में। तो इसके शुरुआत में हमने देखा कि मनु का कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने पुत्र की इच्छा करी और वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ की आयोजन किया। उस यज्ञ में का जो उनका उद्देश्य था एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन कुछ उसमें देखते हैं कैसे कि उसमें कुछ त्रुटि हुआ और अब हम देखेंगे कि वो पुत्र की जगह उनकी एक पुत्री हुई। और स्वयंभू मनु जो थे वो खुश भी थे मनु, लेकिन साथ में वो दुखी भी थे। खुश इसलिए थे क्योंकि उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई थी। विष्णुचार्य ठाकुर बताते हैं वो इसलिए खुश थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा, उस पुत्री का नाम ईला उसका नाम रखा। बट क्योंकि उनको अपने संप्रदाय था, उनका जो आगे वंश था उसको आगे बढ़ाना था, उसके लिए उनको एक पुत्र चाहिए था जो उनके राज्य को देखे आगे, तो उसके लिए उनको एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। तो इसलिए वो दुखी भी थे क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो पिछले श्लोक में और इस श्लोक में वो उन सब ऋषियों को जो यज्ञ कर रहे थे और साथ में वशिष्ठ मुनि को, उन सबको पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया कि हमने तो जो यज्ञ किया था उसका हमारा उद्देश्य था एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पुत्री प्राप्त हो गई। तो वो हैरानी व्यक्त कर रहे हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं कि यूयम ब्रह्म विदो, कि आप सब जो हैं ब्रह्म विद, आप सबको परम सत्य से ब्रह्म विद यानी ब्रह्म परम सत्य जो है उनसे भली भांति वाक्य उनको जानते हैं, परम सत्य यानी भगवान को पूरी तरह से जानते हैं। आप सब ब्रह्म विदा है और युक्त है, युक्त का मतलब आप अपने इंद्रियों में संयम है आपका, और इसकी और क्योंकि आप हमेशा तपस्या करते हैं, इसे दत्त किलबिषम आपके सारे पाप में कर्म सारे पाप जो है खत्म हो चुके हैं, सब जल चुके हैं। तो कुतः फिर ऐसे कैसे हो गया कि संकल्प कि आपके संकल्प था वैषम में, उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है? क्योंकि आपके संकल्प, क्योंकि आपने इतनी तपस्या करी है, आपके सारे पाप खत्म हो चुके हैं और आप भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आपके जो संकल्प हैं वो देवताओं की तरह हैं। जैसे देवताओं कोई देवता अगर कोई संकल्प कर लेते हैं तो वो होता है, वो सत्य होगा। देवताओं किसी देवता अगर किसी को वरदान देते हैं तो वो सत्य होगा, सत्य होता है, वो वचन सत्य होते हैं। तो आपके वचन भी उसी तरीके से सत्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि आपके वचन में त्रुटि कैसे हो सकती है? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं सत मनु उनसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि तपस्या, क्योंकि वो तपस्या में बहुत प्रवीण थे और बहुत प्रभुपदियाँ उसके अनुवाद में बता रहे हैं कि आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारी भौतिक कलमश से अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। तो आध्यात्मिक जीवन में तपस्या का बहुत बड़ा एक अंग है हमारी भक्ति का और बहुत बड़ा उसका रोल है हम सबकी भक्ति के अंदर। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं सातवें अध्याय में नवे श्लोक में कि तपश्चास्मि तपस्वी सु, कि मैं सभी जो तपस्वियां हैं तपस्वी लोग हैं उन सबका जो तप है वो मैं हूँ। स्वयं भगवान अपने आप को बता रहे हैं ये चीज। और हम सृष्टि के प्रारंभ में भी देखते हैं कि सृष्टि की जब प्रारंभ हुआ, सृष्टि जब गर्भोदक्ष विष्णु लेटे थे और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उस कमल पे बैठे थे वो पूर्ण तरह विचलित थे, उनको समझ नहीं आया था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या करना है मेरे को। और तभी वहां पे प्रलय की हवा चलने लगी, उसकी वजह से जिस कमल पे वो बैठे थे वो पूरी तरीके से हिलने लगा, बहुत तेज से हिलने लगा। और ब्रह्मा जी को देखने लगे मैं कहाँ से, मेरा स्रोत क्या है। और वो उस कमल के नाल को पकड़ते हुए उसके नीचे जाने लगे देखने के लिए कि उस कमल का स्रोत क्या है। कौन है जो इस मेरे जो मेरे जीवन का स्रोत है। वो जाते गए लेकिन उनको कोई स्रोत नहीं मिला। फिर वो हताश होकर वापस ऊपर आए और तब उन्होंने ये दो शब्द सुने, तप तप, और उन्होंने तपस्या करने का फिर निर्णय किया, तपस्या करना शुरू किया। फिर हम जानते हैं कैसे उन्होंने तपस्या की, भगवान से स्वयं उनको दर्शन दिए और भगवान ने उनसे उनको आशीर्वाद दिया कि आप सृष्टि की रचना करिए, मेरा आशीर्वाद है आपको, आप सफल होंगे इसमें। भगवान ने उनसे हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, फर्स्ट हैंडशेक ऑफ द क्रिएशन। तो हम देखते हैं सृष्टि की शुरुआत से ही तपस्या से शुरुआत हुई सृष्टि की। श्रील प्रभुपाद दूसरे स्कंद में नवे अध्याय के सातवें श्लोक में इसी संदर्भ में, ब्रह्मा जी के इसी संदर्भ में बताते हैं कि तपस्या के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई प्रमाणिक गुरु की शरण में आता है और वो गुरु परंपरा के शरण में आता है, गुरु परंपरा से जुड़ता है, तो उसे तपस्या का पालन करना चाहिए, अपनी भक्ति को में तो तपस्या का पालन करना चाहिए। हम भक्ति करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे नियम भी होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। तो जनरली लोगों का यही ऑब्जेक्शन होता है, यही विरोध होता है कि आप लोगों में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे नियम हैं, इतने नियम नहीं वगैरह नहीं होने चाहिए। मैं एक जगह कोर्ट पढ़ रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक ही रूल है, दैट देयर इज नो रूल, कि हम एक ही रूल को फॉलो करते हैं कि कोई रूल नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारा फ्रीडम होना चाहिए, हमारे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो चाहे वो कर सकें। तो हर किसी का, बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि आप लोग बहुत बंधन लगाते हैं, बहुत सारे रूल्स लगाते हैं, और इसीलिए कई बार लोग कृष्ण भावना में इतने आते भी नहीं है कि यहाँ बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, जो करना है जो नहीं करना है। ये सबसे बड़ा बाधा लगता है हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद में सबसे बड़ा बाधा है कि ये सारे नियम, जब मैं आज़ाद होऊंगा पूरी तरह से खुश होऊंगा तो मैं असली में आनंद को ले पाऊंगा, लेकिन आपने बांध दिया हमको इन रूल्स रेगुलेशन के। बट एक्चुअली में श्री प्रभुपाद पहले स्कंद में बताते हैं कि जो खुशी है, जो आनंद है इस भौतिक जगत में, वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर, कि कितनी मात्रा में हम भक्ति के या धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड डिपेंड्स प्रोपोर्शनेटली ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है कि जितने मात्रा में हम धर्म के नियमों को पालन करेंगे उतनी मात्रा में हमको आनंद मिलेगा, जितनी मात्रा में हम धर्म के नियमों को नहीं पालन करेंगे उतनी मात्रा में हमारा आनंद कम होगा या नहीं मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेट प्रभुपाद बता रहे हैं, और हम देख भी सकते हैं कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन नियमों का पालन करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो शांत, हमारा मन पीसफुल होता है। मन को नेचुरली मन को नियंत्रण चाहिए, जब मन नियंत्रण में होता है तो उसे अच्छा लगता है, जब वो ट्रेंड हो जाता है तब। हमारा एक्सपीरियंस होगा कभी हमारे पास पूरा दिन खाली है, एक पूरा दिन हमारे पास कुछ भी नहीं करने को, हमको लगता है कि अब तो बहुत कुछ पूरा नहीं है तो बहुत मैं मजे करूंगा, कुछ नहीं है करने को, कोई दिक्कत नहीं है हमको, अपने जो रेगुलर शेड्यूल है आज कोई शेड्यूल नहीं है, आज कुछ नहीं करना, आज अपने काम पे नहीं जाना, अपने स्कूल कॉलेज अपने सेवा में नहीं करना। लेकिन उस दिन जिस दिन हमारे पास कुछ करने को नहीं है उस दिन मन हमारा सबसे ज़्यादा विचलित करता है, हमको हमारे को आनंद में सबसे बड़ा बाधा डालता है, हमको लगता है इसमें सबसे ज़्यादा मैं आनंद लूंगा, लेकिन उस दिन हम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, उस दिन हम खुश नहीं हो पाते, उस दिन सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, बल्कि और फ्रस्ट्रेशन होती है उस दिन, क्योंकि मन कभी कहता है यहाँ जाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। लेकिन उसके हम विपरीत देखेंगे जिस दिन हमारा मन, जो दिन है पूरा हमने प्लान किया होगा, पूरा शेड्यूल्ड होता है, उस दिन हमारा मन भी बहुत संयमित होता है, मन भी बहुत सेटिस्फाइड होता है, मन भी बहुत पीसफुल होता है, और हम भी बहुत एक सत्वगुण के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसी के ऊपर बता रहे हैं पांचवें स्कंद में चौदहवें अध्याय के अंदर, जब यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एन्जॉयमेंट का वर्णन किया गया है, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, विधि विधान यानी भक्ति में बहुत सारे विधि बहुत सारे विधान दिए गए हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक कोई विधि विधान में दृढ़ नहीं रहता, भले ही वह कृष्ण भावनामित आंदोलन का सदस्य ही क्यों ना हो, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ लोग हाँ की लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नहीं आना चाहते क्योंकि बहुत सारे विधि विधान है, बट विधि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ भी गए, बट फिर भी अगर कोई इस विधि विधानों को दृढ़ता से पालन नहीं कर रहा तो चाहे वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य ही क्यों ना हो, वह धृष्टता करता रहता है। धृष्टता प्रभुपाद यहाँ पे इंग्लिश में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ही विल डू परफॉर्म मिसचीवियस एक्टिविटीज, मिसचीव करेगा वो, कुछ ऐसे काम करेगा जिससे औरों को परेशानी होगी। फलतः हम शिष्यों को विधि नियमों के दृढ़ पालन का उपदेश करते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता के उत्थान के लिए किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए हम इसलिए बोलते हैं बार बार कि आपको विधि बल विधान का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अतः जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए जिससे उसका मन विचलित न हो। तो प्रभुपाद यहां दो चीजें बता रहे हैं, जय श्री राधा राधे हनुमान की, कृष्ण बलराम की जय, श्री कृष्ण बलदेव सोदर मानी की जय, गौणताय की जय, श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद यहां दो चीजें बता रहे हैं कि जब हम विधि विधानों का भक्ति के जो दिए गए नियम है उनको दृढ़ता से पालन करते हैं तो पहला भक्तों के बीच में जो कलह है, भक्तों के बीच में जो डिसेंशन है वो नहीं होगा, क्योंकि जब हम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन नहीं करते तो हम भौतिक स्तर पर रहते हैं, हमारी चेतना भौतिक स्तर पर रहती है और जब हमारी आपस में जो डीलिंग्स भी होंगी वो भौतिक स्तर पर होगी, और भौतिक जगत में कलयुग का मतलब क्या है, कलह का युग, हर क्षण कलह कलह होगी, क्योंकि हम दृढ़ता से विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे इसलिए हम भौतिक स्तर पर रहते हैं और भौतिक स्तर पर रहने की वजह से हमेशा कलह, हमेशा डिसेंशंस, द्वेष या फिर भक्तों के बीच में कुछ ना कुछ दुविधा बनी रहती है। और दूसरा, अगर हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा मन विचलित नहीं होगा, हमारा मन शांत रहेगा। तो ये जरूरी है इसलिए भक्ति के नियमों को पालन करने को, इस तपस्या को पालन करना आध्यात्मिक जीवन में। सो क्या है ये तपस्या, तपस्या को क्या कहेंगे, क्यों कि हमने तपस्या की, क्या चीज होती है, क्या डेफिनेशन है तपस्या की। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक जगत को भगवान गीता में बता रहे हैं अनित्य असुखम लोकम, ये अनित्य है, असुखम है, कोई सुख नहीं है यहाँ पे, दुखालयम है, अशाश्वतम है, दुखों से भरा हुआ है। और यहाँ पे दुख है वो हमारे पर लादे जाते हैं, हमारे पर जबरदस्ती डाले जाते हैं दुख, जैसे हम इसी प्रसंग में देखते हैं मनु जो थे वो चाहते थे एक पुत्र की प्राप्ति, उन्होंने किया यज्ञ और यज्ञ किया तो उनको पुत्री मिल गई, पुत्र की जगह पुत्री मिल गई तो उन्होंने फिर दुखी हो गया। अभी आगे देखेंगे हम कि वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करते हैं क्या हो गया है, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने योगिक सिद्धि से इसको पुत्र बना दूंगा, उसको एक लड़का बना दूंगा, तो लड़की को लड़का बना दिया। फिर आगे देखेंगे कैसे वो जो थे वो जंगल में जा रहे थे तो पहुंचे वो जहाँ शिव जी और पार्वती दोनों साथ में थे, वहां उनको श्राप मिल गया और वापस वो लड़की बन गए। तो कितना प्रयास कर रहे हैं सुख को प्राप्त करने का लेकिन वो हमेशा दुख मिलते रहता है, क्योंकि भौतिक जगत का ये स्वभाव है। प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं अपनी शिक्षाओं में कि सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पीय कर्मिणा सर्वत्र लभ्यते दुखम अनिहाय दुखावृत। सुखाय दुख मोक्षाय, हम सबकी इच्छा क्या है कि सुख मिले, सुख आए, और दुख मोक्षाय, दुख का से मोक्ष हो जाए, दुख से दुख की हानि हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा, हर कार्य में हमारा यही संकल्प होता है, सिर्फ और सिर्फ यही संकल्प होता है, लेकिन होता क्या है, लेकिन मिलता है हमको दुख, सुख की इच्छा है लेकिन मिलता है दुख, और अनिहाय सुख आवृता, और जब सुख की का प्रयास नहीं करते तब सुख मिल जाता है। तो ये भौतिक जगत का ये लक्षण है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि यह हमेशा दुख मिलता है हर जीव को ना चाहते हुए भी, तो दुख तो हमेशा है, लेकिन तपस्या का मतलब क्या है कि हम वॉलेंटेरिली अपनी इच्छा से दुख को स्वीकार कर रहे हैं, हम इच्छा से दुख को स्वीकार कर रहे हैं किसके लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए। ऐसे एग्जांपल देते हैं कोई डॉक्टर है, कोई व्यक्ति को शुगर का बीमारी हो गई, उसको डायबिटीज हो गई, डॉक्टर उसको बोलते हैं आपको मीठा नहीं खाना, तो हो सकता है उसको लगे तपस्या है, बहुत मुश्किल है, तो कितना दुख मिल रहा है मेरे को, लेकिन ये किसके लिए? अल्टीमेटली उसके सुख के लिए, उसके फायदे के लिए ये। तो तपस्या क्या है? हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए हम कुछ दुख को स्वयं जानबूझकर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऋषभ भगवान ही बता रहे हैं अपनी शिक्षाओं में कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि यह मनुष्य शरीर मिला है किसलिए मिला है हमें? ये इसलिए मिला है ताकि हम दिव्य तपस्या कर सकें। तपस्या तो कोई दुख तो हम झेल ही रहे हैं भौतिक जगत के अंदर, हर कोई झेल रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है दिव्य तपस्या के लिए। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं इसी श्लोक के, कुकर तथा शूकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं, दिन भर अथक परिश्रम करके बाद मनुष्य रात्रि का समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाता उठाना चाहता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी पड़ती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। तो जो जानवर है वो भी परिश्रम करते हैं, खूब घर से परिश्रम करते हैं, लेकिन किसके लिए? मल को खाने के लिए। और जो मनुष्य है, जो भौतिकवादी मनुष्य हम देखते हैं, वो भी खूब मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं खूब भीड़ में, मेट्रो में ट्रैवल करके, अलग अलग बसों में ट्रैवल करके, भागा दौड़ी करके, ऑफिस में जाके खूब काम करना, बॉस की डांट सुनना, पॉलिटिक्स में पढ़ना, यहाँ जाना, यहाँ भागना, फिर घर आना, घर आके फिर बिजली के बिल को भरना, ये सब करना, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उनका भी क्या एम होता है, उनका भी क्या लक्ष्य होता है? इंद्र तृप्ति। तो प्रभु बता रहे हैं कि हालांकि पशुओं के समाज में भी वहां पे भी दुख है, ऐसी बात नहीं, वहां पे भी बहुत दुख उनको झेलना पड़ता है, उनको भी बहुत सारी परेशानियां लेनी पड़ती है, भौतिकवादी मनुष्यों को भी बहुत सारी परेशानियां लेनी होती है, लेकिन ये मनुष्य शरीर जो मिला है किसलिए मिला है? ताकि हम अपनी इच्छा से तपस्या को लें, अपनी इच्छा से दुख को लें, लेकिन किसके लिए? उस दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए, उस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए तपस्या जरूरी है, और ये है तपस्या। तपस्या का एक और अर्थ है कि हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ बने रहें, चाहे कितने भी परेशानियां आए भौतिक जीवन में। भौतिक जगत का, जैसे हमने बताया अभी, कि भौतिक जगत का ये लक्षण है कि हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा रहेंगी भौतिक जीवन में, लेकिन तपस्या का मतलब क्या है कि इसके बावजूद भी हम कृष्ण भावनामृत दृढ़ बने रहें। अभी हमने कुछ दिन पहले श्री प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाई, तो मैं ऐसी देख रहा था, तो मैं श्री प्रभुपाद की व्यास पूजा देखा वेदा बेस में, श्री प्रभुपाद की व्यास पूजा ऑफरिंग है 1977 में, तो उसमें लॉस एंजलिस के कुछ डिवोटीज हैं, जिसमें सत्स्वरूप महाराज लीड कर रहे हैं उनको, वो बहुत सुंदर एक ऑफरिंग लिख रहे हैं, उसमें वो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि प्रभुपाद हमने एक देखा आपको कि मायापुर में जब आप बहुत बीमार थे कि आप चल भी नहीं सकते थे, और उस समय आप प्रचार कर रहे थे हम सबको, क्या बता रहे थे आप? बता रहे थे हमको जटायु के बारे में, कि जटायु ने खूब मेहनत करी, खूब प्रयास किया सीता माता को बचाने का और रावण से युद्ध करने का, लेकिन वो हार गया। बट एक्चुअली में उसकी हार नहीं थी, प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को लगाया, उसने दुख को झेला किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, इसलिए असली में उसकी विजय, उसकी जीत हुई थी और वो सक्सेसफुल हुआ था। तो प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि हमें भी कृष्ण के लिए सारी दुविधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और भक्ति में लगे रहना चाहिए। उसे बता रहे कि जब श्री प्रभुपाद के पास डॉक्टर आया उनको देखने के लिए, उनसे पूछने के लिए, उनकी बीमारी का देखने के लिए, तो डॉक्टर उनको बताना चाहता था, वो उनको समझाने आया था कि स्वामी जी आपको ना बोलना नहीं चाहिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है, तो आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर आया, प्रभुपाद उसी समय उनको प्रचार करने लगे कृष्ण भावनामृत के बारे में। तो वहां लिख रहे हैं कि कोई भी शक्ति श्री प्रभुपाद को, कोई भी भौतिक शक्ति प्रभुपाद को इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने से नहीं रोक सकती थी। तो श्री प्रभुपाद जो इतने बीमार थे कि वो उठ भी नहीं सकते थे अपने बिस्तर से, तो श्री प्रभुपाद बता रहे अपने शिष्यों को कि मुझे वही बीमारी हुई है जो मेरे पिता को हुई थी। और सब भक्त बहुत डर गए, बहुत परेशान हो गए, प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि कौन शिष्य सुनना चाहता है अपने गुरु से ऐसे शब्द कि वो उनका शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, और प्रभुपाद ने डिसाइड किया अब मैं वर्ल्ड टूर करूंगा फिर से एक और, और प्रभुपाद ने फिर से प्रीचिंग टूर बनाया अपना। अपने आखिरी समय में वो भक्त बता रहे हैं कि प्रभुपाद अपने, हमने देखा वृंदावन में गए, प्रभुपाद वापस आए, प्रभुपाद रहते थे, उसकी छत पे प्रभुपाद मसाज लेते थे और प्रभुपाद वहां कई बार रेस्ट कर रहे थे दिन में। तो प्रभुपाद वहां अपना रेस्ट कर रहे थे और एक भक्त गेस्ट हाउस के साथ में, गेस्ट हाउस है तो गेस्ट हाउस के छत पे थे दूसरे भक्त, तो वो देख रहे थे प्रभुपाद का, प्रभुपाद का दर्शन कर रहे थे वो उस गेस्ट हाउस की छत से। उन्होंने देखा प्रभुपाद को और वो बता रहे हैं भक्त कि प्रभुपाद एक घंटे तक प्रभुपाद अपनी जहां बैठे हुए थे वहां से हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे उस माइक्रोफोन को उठाने का और एक घंटे तक प्रभुपाद प्रयास करते थे करते रहे। उसके बाद प्रभुपाद ने उस माइक्रोफोन को उठाया और 10th कैंटो को प्रभुपाद ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया और प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं अपनी आखिरी श्वास तक मैं प्रचार करते रहूंगा। तो ये है असली तपस्या कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने कृष्ण भावनामृत को बिल्कुल भी रोके ना, कृष्ण भावना को किसी भी दुविधा से, किसी भी परेशानी के में भी हम अपने कृष्ण भावना को उतनी तीव्रता से बढ़ाते जाएं। इसलिए प्रभुपाद अपने जीवन से ही हमको सिखा रहे हैं। सो इसलिए ये तपस्या हम सीखते हैं, प्रभुपाद खुद अपने लाइफ से, अपने एग्जाम्पल से डेफिनेशन दे रहे हैं तपस्या क्या होती है। सो क्या, क्यों करनी चाहिए तपस्या, क्या जरूरत है तपस्या करने की। तो प्रभुपाद इसी दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी के जो प्रसंग आता है उसमें प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तात्पर्य में इस चीज को बता रहे हैं। ये 24वां श्लोक है दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का। प्रभुपाद बता रहे हैं तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कितना हमको दृढ़ होना चाहिए भगवान के प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए। और प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, भगवान कृष्ण हमसे ज्यादा चतुर हैं, अतः वह देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है, क्यों करनी चाहिए तपस्या हमको। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं क्योंकि कृष्ण हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो देखना चाहते हैं कि हम भक्तिमय सेवा के लिए कितना कष्ट उठाना चाहते हैं। तपस्या का आदेश भगवान से सीधा या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है, तो अगर हम दृढ़ता से इस तपस्या का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा हमको जरूर मिलेगी। प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ भक्त की, जैसे कि दो बच्चे हैं तो दो बच्चे रो रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है वो थोड़ा सा रो रहा है फिर चुप हो जाता है, देखता है इधर उधर कोई है, कोई आया कि नहीं आया, फिर देखा कोई कि जो मम्मी है वो यहाँ से जा रही है, फिर रोना शुरू कर देता थोड़ा सा, फिर चली गई मम्मी, फिर चुप हो जाता है। तो माता देखती है कि ठीक है नाटक कर रहा है इसलिए असली में रो नहीं रहा, तो वो ठीक है थोड़ी देर आराम से अपना काम वाम करके फिर आराम से उसके पास आती है, पता है जिसको जल्दी नहीं है कोई। लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो खूब कॉन्टिन्यूसली रो ही जा रहा है, एक ही श्वास है बस रो ही जा रहा है। तो माता को लगता है कि नहीं, इसको सही में कुछ जरूरत है, वो भाग के जाती है अपना सारे काम छोड़ के और उसको पहले उसको देखभाल करती है। तो भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितने आतुर हैं उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो हम तपस्या करते हैं, हम भगवान को दिखा रहे हैं कि हमको आपकी कृपा की जरूरत है, हम चाहते हैं आपकी कृपा की आवश्यकता है हमको, इसलिए तपस्या करना जरूरी है। दूसरा, भौतिक जगत, क्योंकि भगवान जो भौतिक जगत है भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, कृष्ण सर्व आकर्षक है तो भगवान की शक्ति है यानी भौतिक जगत वो भी कैसी है, सर्व बहुत आकर्षक है, वो भी सबको आकर्षित करती है भौतिक जगत में, तो इसको इस आकर्षण से निकल पाना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि भौतिक जगत किसके समान है, रेगिस्तान के समान है, उस रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं वो मृग तृष्णा, उस मृग तृष्णा के पीछे पड़ जाते हैं मिराज, मृग तृष्णा में वो सोचते हैं कि अभी बस आगे थोड़ी दूर में हमको पानी दिख रहा है, बस थोड़ा दूर भागूंगा तो पानी मिल गया मेरे को, बस मिल गया, तो भागता है तो पीने की कोशिश करता है, पानी नहीं आता उसके मुंह में, क्या आता है रेत आती है, उसकी प्यास और बढ़ जाती है। फिर थोड़ी दूर देखता है कि नहीं नहीं वहां पे पानी था असली, तो वो भागता है वहां पे, फिर भागता है वहां पे पहुंचता है, वहां फिर उसको पीने के प्रयास करता है, उसके मुंह में पानी नहीं आता, क्या आता है रेत, उसकी प्यास और बढ़ जाती है। तो ऐसा भागते रहता है, उसकी प्यास बढ़ती रहती है और अंततः वो अपना शरीर छोड़ देता है। इस प्यास से। तो ये भौतिक जगत इसी रेगिस्तान के समान है। जो माया है वो अलग अलग प्रलोभन दिखाती है, आनंद के, सुख के, कि तुम ये कर लो तुमको आनंद मिल जाएगा, तुम ऐसे कर लो तुमको आनंद मिल जाएगा, लेकिन कोई आनंद मिलता नहीं है। ऐसी नवे स्कंद में हम पढ़ते हैं आगे याति महाराज का कथा आती है। याति महाराज स्वयं अपने शब्दों में बता रहे हैं, याति महाराज बता रहे हैं नवे स्कंद के 18वें अध्याय में और 19वें अध्याय में 18वें श्लोक में कि मैंने पूरे 1000 साल बिता दिए किसमें, इंद्र दीप्ति में। हम जानते हैं याति महाराज के बारे में कि उनको श्राप मिला था कि उनका यौवन जो है वो खत्म हो जाएगा, और जब उनको श्राप मिल गया, यौवन खत्म हो गया, तो वो इंद्र दीप्ति नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्रों, अपने सारे पुत्रों के पास गए कि तुम अपना मेरे को यौवन दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। वो जो कितना व्यक्ति अंधा हो जाता है इंद्र दीप्ति में, कि अपने पुत्रों के पास गए कि अपना यौवन दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। और फिर हम जानते कैसे पुरु महाराज ने उनका यौवन दिया अपना उनको। और फिर याति महाराज बता रहे कि मैंने पूरे 1000 साल इंद्र दीप्ति में लगाए, इंद्र दीप्ति में भोग करने में लगाए, लेकिन फिर भी मेरी जो इच्छा है कभी संतुष्ट नहीं हुई, एक दिन भी मेरी इच्छा संतुष्ट नहीं हुई। स्वयं याति महाराज बता रहे ये चीज 1000 साल तक भोग करने के बाद भी। हम सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि हम कभी बार हमको लगता है कि कुछ चीज में कोई मिल जाएगी तो हमको कितना आनंद मिल जाएगा, बस ये मिल जाए, अभी है नहीं है लेकिन जब मिल जाएगी तो कितना आनंद हो जाएगा। आजकल बहुत सारी गैजेट्स, बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कई बार लोगों का आकर्षण होता है गैजेट्स के प्रति कि हमको नया फोन आया है, iPhone 7 आया है, ये आया है, तो हमको ये लेना चाहिए, जब ये मिल जाएगा तो कितना आनंद हो जाएगा, बस मेरी जो दुनिया है बहुत खुशहाल हो जाएगी। तो लोग प्रयास करते हैं उसको लेने का, पूरा दिन रात एक कर देते हैं किसी ना किसी तरह से, EMI भरने के लिए, लोन लेने के लिए, किसी से मांगने के लिए। 5वें स्कंद में आता है चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कैसे कैसे करके झूठ बोलेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन वो चीज चाहिए। जब वो चीज मिल जाती है कुछ समय बाद क्या होता है, उसका जो चाव है वो खत्म हो जाता है। अब उसी चीज में उनको कोई रुचि नहीं है, होता है कोई दूसरा बेच के दूसरी चीज ले लो, कोई और ले चीज चाहिए, तो कोई टेस्ट नहीं रहता उसमें, क्योंकि ये भौतिक जगत का लक्षण है। हमको लगता है कई बार कि बहुत सुंदर सुंदर कोई पकवान बना, कोई बहुत, मेरे को लगता है कि ये चीज अगर मिल जाएगी हमको तो बस ये बस टेस्ट नहीं किया मैंने अभी, जब ये टेस्ट मैं कर लूंगा तो मैं आनंद के समुद्र में फिर डूब जाऊंगा इतनी अच्छी तरीके से, बस अभी इसको टेस्ट नहीं किया। लेकिन हम कितने अपने जीवन में कितनी टेस्टी चीजें को टेस्ट कर चुके हैं लेकिन आज तक हमारी जीवा कभी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि भौतिक जगत का ये लक्षण है कि हमेशा भगाते रहेगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गधे के आगे हम गाजर डाल देते हैं, उसको टांगी हुई है गाजर, तो वो जा रहा है आगे और लग रहा है अब गाजर मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, लेकिन जितना आगे जा रहा है गाजर भी उतनी आगे जा रही है। तो हम जितना आगे भाग रहे हैं सुख उतना आगे हमारे भागे जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये माया का प्रलोभन है, इससे सब भौतिक जगत के सब लोग इससे प्रलोभित है और सब इसमें मंत्रमुग्ध है इससे, इसके लिए उसको उनको कभी भी असली आनंद नहीं मिल पाता, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो समझते नहीं है इसको और भागते रहते हैं, इसके पीछे भागते रहते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं तब हमको समझ आते हैं, नहीं नहीं हम पढ़ते हैं भागवतम, पढ़ते हैं भगवद गीता, पढ़ते हैं इसलिए प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर्स में बार बार इस चीज के बारे में इतना प्रभुपाद हिट करते हैं इसके बारे में, नहीं नहीं इंद्र दीप्ति नहीं, इंद्र दीप्ति भौतिक, ये मनुष्य शरीर इंद्र दीप्ति करने के लिए नहीं मिला है, ये तो कुकर शुगर जो है वही आनंद है जो कुकर शुगर लेते हैं आनंद, जो मल खाने वाले जो जीव जो आनंद लेते हैं वही आनंद है इंद्र दीप्ति में। तो हमारे जीवन इस इंद्र दीप्ति के लिए नहीं मिला, कुछ उससे भी ऊपर कुछ हायर आनंद को लेने के लिए मिला। प्रभुपाद बार बार समझाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ थ्योरेटिकली एटलीस्ट समझ आता है कि हाँ हाँ प्रभुपाद कहे तो बात सही रहे हैं कि हमको आज तक आनंद नहीं मिला और नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा संस्कार इतने स्ट्रांग है और भौतिक जगत का माया का इतना प्रलोभन है इतने सारे, और आजकल तो इतने सारे एडवर्टीजमेंट इतना कुछ होते रहता है कि जो हम सब जो भी नियोफाइट भक्त होते हैं, नए भक्त होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसको रोक पाना। हमको पता भी है कि भौतिक जगत में जो माया प्रलोभन दिखा रही है इसके वश में हमको नहीं आना, और हमको ये सिर्फ हमको सुख की आशा देगा और सुख नहीं देगा हमको, अंततः हमको ये दुख का ही हमको सामना करना पड़ेगा। और असली सुख हमको पता है कि भक्ति में ही है, बट फिर भी क्या होता है हम चाहते हुए भी हम इसको रोक नहीं पाते। तो ये ये आयरनी रहती है सब भक्तों की, नए जो भी नौसिखिए भक्त होते हैं उन सबकी आयरनी रहती है कि हम जो भौतिकवादी लोग हैं वो भाग रहे हैं उस इंद्रियतृप्ति के पीछे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। फिर जो भक्त हैं वो भाग रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो चाहते नहीं है भागना, और रोकना चाहते हैं और रोक नहीं पाते, तो बहुत बड़ी विडंबना में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये साइंस दिया गया है तपस्या का, इसलिए बार बार शास्त्र बताते हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए, तपस्या करना पड़ेगा। हमें तपस्या करनी है उन चीजों को ना करने की जो हम चाहते हैं करना, जो हमारा मन चाहता है हमारे को करवाना, हमारी इंद्रियां चाहती हैं हमें करवाना, उनको ना करने की, और जो हम नहीं चाहते उनको करने का। लेकिन किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारी तपस्या उन योगियों के जैसे नहीं है कि हमको, जैसे योगी लोग पहले प्रभुपाद बताते हैं कि तपस्या करते थे वो रेगिस्तान में एकदम गर्म धूप में आग लगा के बैठ जाते थे उसके बीच में तपस्या करने के लिए, या बिल्कुल ठंड में बर्फ के पानी में बैठ जाते थे तपस्या करने के लिए। तो ऐसी कठोर तपस्या करने का हमारा विधान नहीं है, भक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी कठोर तपस्या करेंगे उससे हमारा हृदय भी कठोर हो जाता है, और भक्ति के लिए कठोर हृदय नहीं चाहिए, मुलायम हृदय चाहिए, सॉफ्ट हार्ट चाहिए, तो वो भगवान को प्रसन्न करेगा। तो हमको भक्ति करनी है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता। तो हम करेंगे सब तपस्या लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए हमारे जीवन में तपस्या करने की, तपस्या करना बहुत जरूरी है, तपस्या का बहुत बड़ा एक रोल है हमारे जीवन में। सो अब फाइनली आता है कि हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए, क्या है तरीका तपस्या करने का, अगर हमको योगियों की तरह तपस्या नहीं करनी तो क्या तपस्या करनी है हमको। सो जैसे बता कि अगर हमको माया से आकर्षित होना है तो उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी, वो नेचुरल है हम सबके लिए, लेकिन कृष्ण से आकर्षित होने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान बना दिया इस तपस्या को करने के लिए। क्या है वो तपस्या? चैतन्य महाप्रभु तीन चीजें की, हरि नाम संकीर्तन, चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग। कि चैंटिंग करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, नृत्य करना और फीस्टिंग करना। जब चैंटिंग किया, डांसिंग किया, फिर भूख लगी और फीस्टिंग किया, तो यही तपस्या है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दी है ना। कितना सरल है, पहले के युगों में उनको इतनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ती थी। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करी, तब भी वो सफल नहीं हो पाए। तो सब जो ऋषि मुनि होते हैं कई कई सालों तक तपस्या करते थे, इतनी भीषण तपस्या करते थे। ध्रुव महाराज ने कितनी भीषण तपस्या करी, सांस तक रोक ली उन्होंने, लेकिन हमको इतनी तपस्या नहीं करनी। क्या करना है? सिर्फ चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में ये चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करना भी, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि तपस्या क्या है कि तपस्या है कि हमेशा उत्साहित रहना इस चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग में भी, क्योंकि बहुत सारे दुख भी आएंगे, बहुत ज्यादा खुशी भी आ जाएगी ना, बहुत ही जगत है, सब कुछ आएगा। और जब हम जप कर रहे हैं तो जब प्रोपा बताते हैं, सारे आचार्य बताते हैं कि हमें बहुत अटेंटिवली जप करना चाहिए, तो ये हमारे लिए तपस्या है कि ध्यान पूर्वक जप करना, वही नहीं हो पाता। मन सारे हमको, सारी जो प्लानिंग है, सारे जो प्रोग्राम्स बनाने का होता है, वो कब होता है? जप के समय पे। तो उस समय हमारे को तपस्या करनी पड़ती है जप करने की, और पूरे उत्साह से इस संकीर्तन मूवमेंट में हमेशा लगे रहे ये तपस्या करना। तो ये तपस्या है, हालांकि चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग करना है, लेकिन इसके लिए भी तपस्या हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही जीवन है, हम बद हैं इसलिए। सो इसको आसान करने के लिए प्रभुपाद एक चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ब्रह्मा जी के प्रसंग में, जिसमें ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं और वो सफल होते हैं, तो वो हमारे आचार्य हैं, तो आचार्यों ने तपस्या करके सफल हुए हैं, तो हमको उनका जो पद चिन्ह है उसको पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, भगवान जब दर्शन देते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं, और ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं भगवान, उनको बोलते हैं कि सर्वोच्च सिद्धिमय पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, जो ब्रह्मा जी को हो गया था भगवान के दर्शन करने के बाद। और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। क्यों तुमको भगवान बता रहे हैं कि तुमने तुमको ये दर्शन हुए हैं? इसलिए नहीं सिर्फ कि तुमने तपस्या करी है बहुत भीषण, बट इसलिए क्योंकि तुम्हारा विनम्र प्रवृत्ति, यानी प्रभुपाद यहां बता रहे हैं इंग्लिश में सबमिसिव एटीट्यूड, मेरे आदेशों के प्रति तुम्हारा सबमिसिव एटीट्यूड, तुम्हारा जो सबमिशन, तुम्हारी विनम्रता मेरे आदेशों के प्रति, इसकी वजह से तुमको मेरी कृपा मिली है भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद इसी में आगे बता रहे हैं कि ठीक है ब्रह्मा जी को मिला, बट हम कैसे, हमको तो भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए, भगवान का साक्षात आदेश नहीं मिला, तो हमको कैसे भगवान की कृपा मिल सकती है, कि हम भी कैसे, जैसे ब्रह्मा जी को कृपा मिली है हम कैसे मिल सकते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं इसी तात्पर्य में सातवें श्लोक में कि उस परंपरा में योग गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। कि अगर हम गुरु के आदेश के अनुसार तपस्या में रत होते हैं तो हमको वही फल मिलने वाला है जो ब्रह्मा जी को मिला था जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, है कि नहीं। और प्रभुपाद फिर उसमें बता रहे हैं कि हमें कैसे करना है कि पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली बन गए जिससे कि वह ब्रह्मांड की सृष्टि हो, सृष्टिकर्ता हो सके। जब उन्होंने ऐसी तपस्या करी, और उसमें क्या जरूरी है कि प्रमाणित गुरु के आदेश के पालन से, प्रमाणित गुरु के आदेश को पालन करना, तो हम जब प्रमाणित गुरु के आदेश को पालन पूरी शक्ति से पूरी दृढ़ता से करते हैं तो हम उतने शक्तिशाली, इतना हमारे पास शक्ति, इतनी हमारे पास दृढ़ता आ सकती है जब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे। और यहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रमाणित गुरु के आदेशों को पालन करना उसी के समान है कि हम भगवान के आदेशों को पालन कर रहे हैं। प्रमाणित गुरु के आदेशों को पालन करके तपस्या करना उसी के समान है कि भगवान ने स्वयं जैसे ब्रह्मा जी को बोला तपस्या करने को। तो हमें कुछ नया इन्वेंट, कुछ नया इजाद नहीं करना, हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे को गुरु ने आदेश दिए। तो हम सब के लिए तपस्या क्या है? गुरु के आदेश, और गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन करना। अभी पीछे शनिवार को रुक्मणि कृष्ण जी का लेक्चर हुआ था, प्रभु ने एक चीज बताई थी उसमें कि दीक्षा के समय, दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हम आ गए, अब तो दीक्षा भी ले ली हमने, तो अब क्या मतलब है कि अब हम पूरी तरह से आनंद में रहेंगे, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हमको चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ, एकदम आनंदमय लाइफ। बट एक्चुअली में दीक्षा या फिर आध्यात्मिक जीवन में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम परेशानियों को और बोझे को, बर्डन्स को लें, जो हमारे गुरु के का जो पेन्स हैं, उनके बर्डन्स हैं, उनको लें, और अब इन एंग्जाइटी को लें गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए उनके जो उनकी जो एंग्जाइटीज हैं, गुरु की एंग्जाइटी क्या है? कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होना। तो ये एंग्जाइटीज को हम लेना, उनके बर्डन को लेना, ये हमारे लिए असली तपस्या है, और एकमात्र तपस्या है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन से करके दिखाया इसी तपस्या को। इसलिए प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर में बहुत आराम से, बहुत सुख से रह रहे थे। हम पढ़ते लीलामृत में बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद भारत में थे, भारत में उस समय और अभी भी काफी हद तक साधुओं को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। प्रभुपाद को बिना किसी मुश्किल के प्रभुपाद प्रधानमंत्री से मिल चुके थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से मिल लेते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मिल लेते हैं, और बहुत सारे प्रभुपाद ने को सहायता मिल गई थी भागवतम को छापने में, प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो भी प्रिंट करवा लिया था। तो प्रभुपाद काफी हद तक कर चुके थे जो उनके गुरु ने बोला, उनको ग्रंथ छापने को बोला, उन्होंने ग्रंथ छाप रहे थे वो, और उनको विदेशों में प्रचार के बोला था तो विदेशों में इन ग्रंथों को भेजे थे पोस्ट करके। तो आराम से वो रहते, किसी भी मंदिर में वृंदावन में रहते, उन्हें कोई मना ना करता, उनको किसी भी मंदिर में रह सकते थे आराम से, उनको खाने को मिल जाता, रहने को मिल जाता वृंदावन धाम में, सेवा कुंज में, श्री राधा दामोदर के पास एकदम जो सेंटर है, जो केंद्र है आध्यात्मिक जगत का, वहां पे रह रहे थे प्रभुपाद रूप गोस्वामी के शरण में। क्या चिंता थी, कोई क्या टेंशन थी, आराम से भजन कर रहे थे प्रभुपाद इतनी आसानी से। नहीं, प्रभुपाद ने फिर भी अपने इस कंफर्टेबल जीवन को छोड़कर प्रभुपाद ने डिसाइड किया, नहीं, मेरे गुरु का जो आदेश है उनको पालन करना है, मेरे गुरु की जो एंग्जाइटी है, गुरु ने क्या बोला था कि पाश्चात्य देश में प्रचार होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, कि पृथ्वी ते आज ये नगर अधिक्रमण, पृथ्वी के हर नगर में हर ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो ये महाप्रभु का आदेश है, मेरे गुरु परंपरा का आदेश है, ये मेरे गुरु की एंग्जाइटी है, तो मेरे को इस एंग्जाइटी को लेना होगा। तो प्रभुपाद स्वयं निकले उस कंफर्ट जोन से, प्रभुपाद निकल के प्रभुपाद गए विदेश में, अमेरिका में। हम पढ़ते हैं लीलामृत में कैसे प्रभुपाद को कितने स्ट्रगल करने पड़े। प्रभुपाद का जीवन पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ था। प्रभुपाद को जाने के लिए इतनी तपस्या, वहां पहुंच के प्रभुपाद वहां अग्रवाल के घर पे रहने लगे। तो जो प्रभुपाद एक साधु, उनको उसी फ्रिज के अंदर अपना खाना रखना पड़ रहा है, अपना प्रसाद रखना पड़ रहा है, जहां पे वो मीट रख रहे हैं, मांस रख रहे हैं। उनकी जो वाइफ थी कई बार स्मोक करती थी, प्रभुपाद कहने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रभुपाद को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रभुपाद के पास कोई जगह नहीं थी रहने की। उसके बाद प्रभुपाद रहने लगे डॉक्टर मिश्रा के पास। प्रभुपाद का पूरा प्रचार किसके लिए था? मायावाद का खंडन करने के लिए। और उनको रहना पड़ा किसके पास? एक मायावादी के पास, डॉक्टर मिश्रा के पास। वो उनको बोलने के लिए अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है प्रभुपाद बोलेंगे तो उनके सारे शिष्य उनके पास आ जाएंगे, प्रभुपाद के पास। फिर प्रभुपाद को वहां से चेंज करके दूसरे किसी एक रूम में रहना पड़ा। उस रूम में रहने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ नहाने का फैसिलिटी नहीं था, कुकिंग का फैसिलिटी नहीं था, उसके लिए प्रभुपाद को जाना पड़ता था वापस डॉक्टर मिश्रा के पास चल के। कई बार अमेरिका की ठंड, बहुत ठंड होती है अमेरिका में, उस ठंड में प्रभुपाद को चल के जाना पड़ता था। एक बार प्रभुपाद अपनी खिड़की के बाहर निकले, देखा तो देखा कि पूरा व्हाइट वॉश हुआ पड़ा है सारी बिल्डिंगों के अंदर। प्रभुपाद को लगा ये क्या हुआ, कल तो नहीं था व्हाइट वॉश, आज कैसे हो गया? तो देखा क्या था, वो पूरी बर्फ जमी हुई थी, बर्फ की पूरी परत लगी हुई थी खिड़कियों पे, इतनी ठंड होती थी। वहां से प्रभुपाद गए फिर बाउरी स्ट्रीट, उन नशे करने वाले उन हिप्पियों के साथ में रहने, जहाँ पे मुकुंद गोस्वामी महाराज अपनी बुक मिरेकल ऑन सेकंड एवेन्यू में लिख रहे हैं कि वहां हमेशा बियर और मूत्र की स्मेल आती थी जब वो जाते थे। तो महाराज जब उस समय गए, माइकल नाम था महाराज का उस समय, तब वो गए, वो सोच रहे थे कि कोई स्वामी ऐसी जगह पे कैसे रह सकता है। तो ये सब तपस्या प्रभुपाद कर रहे। प्रभुपाद बार बार जाते थे उस शिप कंपनी के पास कि अगली शिप कब जा रही है, अच्छा मेरी टिकट रखना उस शिप के अंदर। प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि जाते नहीं थे, बोलते स्वामी जी हर बार बोलते अब जाते नहीं हो। प्रभुपाद तो क्या हाल है, वो बार बार सोचते हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा, वापस जा रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनको एक ही बात हमेशा सोचते रहते थे कि मेरे गुरु का आदेश है, तो इसलिए प्रभुपाद ने तपस्या करी। तो हमारे लिए भी एकमात्र तपस्या क्या है, गुरु के आदेश को पूरी दृढ़ता से पालन करना, जो उनकी जो एंग्जाइटीज हैं, उनका जो बर्डन है, उसको अपने सर पर लेने का। और प्रभुपाद भी यही चाहते हैं, प्रभुपाद का यही आदेश था अपने सब शिष्यों के प्रति कि अब जो मैंने प्रचार किया है, अब आप उन सबको संभालो, अब आप सब आगे लो इसको। तो हमारे सबको भी यही तपस्या का पालन करना चाहिए। अगर हम करेंगे इसको, तो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान का कृपा प्राप्त हुआ था, भगवान का दर्शन हुआ था, गोलोक वृंदावन का दर्शन हुआ था उनको, तो उसी तरीके से हम भी इसी तपस्या करके वही फल को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के प्रिय बन सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। समय हो गया तो